परमेश्वर में प्रभु का जीवित वचन सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
नमस्कार श्रोताओ, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल में से लुका रचित सुसमाचार का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और श्रोताओं, हमें विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए श्रोताओ, सुनते हैं आज का ये कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। आशा करता हूं कि आप सब कुशल पूर्वक हैं और प्रतिदिन की तरह आज भी परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मित्रों, जैसे कि आपको मालूम है कि हम पिछले अध्ययन में देख रहे थे कि बड़ी भीड़ यीशु को घेरे हुए थी। इस समय यीशु गलील सागर के तट पर था और वहां दो नावें खड़ी थी और उसका स्वामी अपने जाल को धो रहा था। यीशु एक नाव में चढ़ गया और उसके स्वामी से निवेदन किया कि वह किनारे से कुछ दूर ले चले। यह नाव शमौन की थी। यीशु ने नाव में बैठकर उपदेश दिया। उपदेश समाप्त करने पर यीशु ने पतरस से कहा कि वह नाव को गहरे जल में ले चले और जाल डाले। शमौन ने यीशु से कहा कि उन्होंने पूरी रात प्रयास किया परंतु कुछ भी हाथ नहीं लगा। फिर भी यीशु के कहने पर उसने जाल डाला और बहुत सी मछलियां जाल में आ गई। अब हम लुका 5 अध्याय उसके 5 पद को पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, शमौन ने उसको उत्तर दिया कि हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। इस पद को पढ़ने से ऐसा प्रतीत होता है कि शमौन ने यीशु से विवाद किया। वे अनुभवी मछुआरे थे और उन्हें अपने ऊपर पूरा भरोसा था कि गलील सागर में मछली कैसे पकड़ी जाए। अतः शमौन यीशु से कहता है कि पूरी रात उन्होंने जाल डालकर रखा था परंतु एक भी मछली जाल में नहीं आई। किसी सेना अधिकारी ने अपने एक जनरल को आज्ञा दी तो उस जनरल ने कहा, यह असंभव है। उस सेना अधिकारी ने कहा, मैं असंभव आज्ञा नहीं देता हूं। जब मसीह यीशु आज्ञा देता है तो आपको विवाद करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि आप प्रयास करके देख चुके हैं। और यह काम असंभव है, वह असंभव आज्ञाएं नहीं देता है। हम लुका 5:6 में पढ़ते हैं, जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इन पदों में हमारे लिए अनेक शिक्षाएं हैं। मछली पकड़ना एक कला है। आपको वहां जाल डालना होगा जहां मछलियां हैं। मछली का चारा भी सही होना चाहिए। आपको पकड़ने के लिए धीरजवंत होना आवश्यक है। परंतु सबसे बड़ी शिक्षा यह है कि हमें प्रभु यीशु के आदेशानुसार जाल डालना है। यदि हमें मनुष्यों को मसीह में लाना है तो हमें उसके आदेशानुसार कार्य करना होगा। यहाँ लिखा है कि जाल टूटने लगा परंतु यहूना के वृतांत में जाल पूरा भर गया था परंतु टूटा नहीं। मछुआरों का जाल एक सच्चाई का प्रतीक है। यहाँ जाल में मछलियां इसलिए समा नहीं रही थी कि यीशु अभी मरकर मुर्दों में से जी नहीं उठा था। यह सुसमाचार है। मछलियों को पकड़ने वाला जाल मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान पर आधारित होता है। यहाँ जाल टूट गया था परंतु उसके पुनरुत्थान के पश्चात जाल नहीं टूटा था। आप देख सकते हैं यूहन्ना 21:1 उसके 1-11 में, तब यीशु ने उनसे कहा कि दुनिया के छोर तक सुसमाचार सुनाओ। हम लुका 5:5 उसके 7-8 में पढ़ते हैं, इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नाव यहां तक भर ली कि वे डूबने लगी। यह देखकर शमौन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूं। यहां पर ध्यान दीजिए कि उन्होंने बहुत अधिक मछलियां पकड़ी थी कि दो नावें डूबने लगी। शमौन अपनी भूल स्वीकार करता है। वह विश्वास की कमी के कारण एक अच्छा मछुआ भी नहीं था। पतरस ने कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। उसके कहने का अर्थ था, प्रभु, तूने मुझे मनुष्यों का मछुआ बनाने के लिए बुलाया है परंतु मैं मछली पकड़ने लौट गया। प्रभु, मुझसे भूल हो गई है। मैं सोचता था कि मैं इस काम में निपुण हूँ परंतु नहीं, मुझे आज एहसास हो गया है कि मैं एक काम में भी सिद्ध नहीं हूँ। मुझे अकेला छोड़ दे प्रभु, मैं पापी हूँ। तू किसी अन्य विश्वास योग्य मनुष्य को देख ले। परंतु यीशु शमौन को छोड़ना नहीं चाहता था। वह उसके द्वारा काम करना चाहता था। हमारे साथ भी वह ऐसा ही करता है। हमें भी यह समझना आवश्यक है कि हम अच्छे मनुष्य नहीं हैं, अर्थात हमें अपनी असफलता और अविश्वास का बोध होना आवश्यक है। हम उस पर विश्वास करें तो वह हमें मछली पकड़ने के काम से अलग नहीं करेगा, वह हमारे द्वारा काम करेगा। एक उत्साहवर्धक सच्चाई यही है। हम लूका उसके 5:9-10 पद में पढ़ते हैं, क्योंकि इतने मछलियों के पकड़े जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ, और वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और योहना को भी, जो शमौन के सहभागी थे, अचंभा हुआ। तब यीशु ने शमौन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीवता पकड़ा करेगा। मेरे मित्र, शमौन पत्रस ने मनुष्यों को पकड़ा। पेंतिकोस्त के दिन उसका अविश्वसनीय कार्य देखें। पत्रस को दिया गया यीशु का उत्तर अत्यधिक महत्वपूर्ण है। उसके प्रथम प्रचार पर 3,000 मनुष्यों ने मसीह को ग्रहण किया था। पत्रस परमेश्वर के आदेशानुसार मछली पकड़ रहा था। यहाँ एक और गंभीर शिक्षा है, एक और मछुआ शैतान है। 2 तीमुथियों के पत्र 2:26 पद में पौलुस यही कहता है, और इसके द्वारा उसकी इच्छा पूरी करने के लिए सचेत होकर शैतान के फंदे से छूट जाएं। शैतान भी अपना जाल डाले हुए है। परमेश्वर आपकी आत्माओं को जीतने के लिए कार्य कर रहा है, और दूसरी ओर शैतान संसारिक लालसाओं के प्रलोभन द्वारा आपको फंसाने का प्रयत्न कर रहा है। आप कह सकते हैं कि परमेश्वर का जाल क्रूस है, जहां परमेश्वर के पुत्र ने अपनी जान दी। अब प्रश्न यह है कि आप किसके जाल में आए हैं? आप या तो परमेश्वर के हैं या शैतान के। तीसरा मछुआ और कोई नहीं है। आगे हम देखते हैं यीशु कोढ़ी को शुद्ध करते हैं। लूका 5:12-13 पद में लिखा है, जब वह किसी नगर में था तो देखो वहां कोढ़ से भरा हुआ एक मनुष्य था, और वह यीशु को देखकर मुंह के बल गिरा और विनती की कि हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा, और उसका कोढ़ तुरंत जाता रहा। प्रिय मित्र, 12-15 पदों में एक कोढ़ी की चंगाई का वर्णन है। लूका जो डॉक्टर था, अतः वह उस कोढ़ी की चंगाई में उसकी मानसिक स्थिति को समझाता है। उस युग के लोग इन बातों को नहीं समझते थे। हमें बताया तो नहीं गया है कि उसे अपने कोढ़ के बारे में कैसे पता चला, परंतु हो सकता है कि वह काम पर से घर आया और उसने अपनी पत्नी से कहा कि उसके हाथ में एक घाव सा है। उसकी पत्नी ने उस पर पट्टी बांध दी, और 1-2 दिन पश्चात उसकी घाव और अधिक खराब हो गया, तो उसकी पत्नी ने कहा कि वह याजक को दिखाए। याजक ने उसे 14 दिन अलग रखा, और 14 दिन के बाद देखा तो पाया कि उसका कोढ़ फैल गया है। याजक ने घोषणा कर दी कि वह कोढ़ी है। उस व्यक्ति ने बड़ी निराशा से कहा, मुझे मेरी पत्नी और मेरे बच्चों से विदा लेने दे। याजक ने कहा, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम अपने बच्चों को गले नहीं लगा सकते। वह बेचारा वहां से अकेला चला गया। उसका परिवार उसका खाना लाकर एक स्थान पर रखकर चला जाता था, और वह दूर से ही अपनी पत्नी को देखता और अपने बच्चों को बड़ा होते देखता था। मेरे प्रिय मित्र, एक दिन यीशु वहां से जा रहा था, और उसने यीशु से कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। राजाओं के राजा ने उत्तर दिया, हाँ, मैं चाहता हूं कि तू चंगा हो जाए। उसने हाथ बढ़ाकर उस कोढ़ी को छुआ। उसने वर्षों से किसी भी मनुष्य के स्पर्श का अनुभव नहीं किया था। आप कल्पना कर सकते हैं कि मसीह के स्पर्श का अनुभव उसके लिए कैसा अद्भुत रहा होगा। क्या प्रभु यीशु ने आपके जीवन को स्पर्श किया है? अनेक जीवन है जिन्हें उसके स्पर्श का अनुभव करना है। यदि आप उसके हैं और उसके आदेश पर कार्य कर रहे हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप प्रभु के लिए निश्चय ही किसी को ले आएंगे। आपको अपना हाथ बढ़ाकर किसी को छूना है। आज उसके लिए किसी को छूना है। यीशु लकवे के रोगी को चंगा करते हैं। हम लूका 5:17-20 पद में पढ़ते हैं, और एक दिन ऐसा हुआ कि वह उपदेश दे रहा था, और फरीसी और व्यवस्थापक वहां बैठे हुए थे, जो गलील और यहूदिया के हर एक गांव से और यरूशलेम से आए थे, और चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ उसके साथ थी। और देखो, कई लोग एक मनुष्य को जो झोले का मारा हुआ था खाट पर लाए, और वे उसे भीतर ले जाने और यीशु के सामने रखने का उपाय ढूंढ रहे थे। और जब भीड़ के कारण उसे भीतर न ले जा सके, तो उन्होंने कोठे पर चढ़कर और खफरेल हटाकर उसे खाट समेत बीच में यीशु के सामने उतार दिया। उसने उनका विश्वास देखकर उससे कहा, हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हुए। प्रिय मित्र, यीशु कफरनहूम में था और घर में बहुत भीड़ थी, अतः इस रोगी के साथियों ने उसे छत खोलकर यीशु के सामने उतार दिया। मार्कुस रचित सुसमाचार का वर्णन सबसे छोटा है, परंतु वह इस घटना को विस्तार पूर्वक लिखता है। यीशु ने उससे कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। यह व्यक्ति सौभाग्यशाली था कि उसने स्वयं परमेश्वर के मुंह से ये शब्द सुने। मेरे मित्रों, ऐसे अनेक मनुष्य हैं जो उद्धार का समाचार तब ही सुनेंगे जब आप उन्हें खाट के साथ उठाकर प्रभु के सामने उपस्थित करेंगे। वे पाप और संसार के कारण, अंधविश्वास एवं अनास्था के कारण अनभिज्ञ हैं और यीशु से सुन नहीं सकते कि तेरे पाप क्षमा हुए। आपको ही उनकी खाट उठाकर उन्हें यीशु के पास लाना है। मेरे मित्रों, इन सब घटनाओं से प्रकट है कि प्रभु यीशु हमसे चाहता है कि उसके उद्धार का सुसमाचार मनुष्यों में फैलाएं। यही कारण है कि मैं परमेश्वर के वचन का प्रचार करता हूं। ध्यान रखें कि एक मनुष्य किसी रोगी की खाट को उठा नहीं सकता। उस रोगी की खाट को उठाने के लिए चार पुरुषों की आवश्यकता थी। आज अनेक स्त्री और पुरुषों की आवश्यकता है कि परमेश्वर के वचन का प्रचार करें। आगे हम देखते हैं कि यीशु मत्ती को बुलाता है। लुकार्ची सुसमाचार 5 अध्याय उसके 27 और 28 पद में हम पढ़ते हैं, और इसके बाद वह बाहर गया और लेवी नाम एक चुंगी लेने वाले को चुंगी की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। तब वह सब कुछ छोड़कर उठा और उसके पीछे हो लिया। मत्ती अपने सुसमाचार वृतांत में यहीं तक लिखता है। मार्कुस इससे कुछ अधिक लिखता है और लुका कहीं और अधिक लिखता है। हम लुका 5:29 पद में पढ़ते हैं, और लेवी ने अपने घर में उसके लिए बड़ी जेवनार की और चुंगी लेने वालों की और औरों की जो उसके साथ भोजन करने बैठे थे एक बड़ी भीड़ थी। लेवी ने यह भोज अपने साथियों को मसीह के पास लाने के लिए किया था। यह सच है कि मत्ती किसी भी बाइबल अध्ययन कॉलेज में अध्ययन करने के लिए नहीं गया था। वह चुंगी लेने का काम करता था और बड़ा ही धूर्त व्यक्ति था। यीशु को ग्रहण करने के पश्चात उसने अपने ओर से यथासंभव प्रयास किया कि अपने साथियों को मसीह से परिचित करवाए। वह एक धनवान व्यक्ति था, अतः उसने भोज का आयोजन किया और अपने सब दुष्ट मित्रों को आमंत्रित किया। वहां उपस्थित शास्त्री और फरीसियों से यह सहन नहीं हुआ, तब वे उसके शिष्यों से शिकायत करने लगे। हम लूका 5:30 पद में पढ़ते हैं, लिखा है, और फरीसी और उनके शास्त्री उनके चेलों से यह कहकर कुड़कुड़ाने लगे कि तुम चुंगी लेने वालों और पापियों के साथ क्यों खाते पीते हो। यहां पर हम देखते हैं उनके प्रश्नों का उत्तर यीशु ने दिया। यीशु अपने लोगों के पक्ष में रहता है। हम लूका 5:31-32 पद में पढ़ते हैं, यीशु ने उनको उत्तर दिया कि वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए अवश्य है। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूं। यीशु का उत्तर सरल एवं अद्भुत था। वैद्य की आवश्यकता रोगियों को होती है, स्वास्थ्य जनों को नहीं। यीशु एक वैद्य था, वह पाप के रोगियों को चंगा करने आया था। सुसमाचार उनके लिए है जो अपनी आवश्यकता को पहचानते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि वे उद्धार पाने के लिए अपने आप में धर्मी हैं, उन्हें अपनी आवश्यकता का बोध नहीं है। यदि आपको यह समझ में आ जाए कि आप आवश्यकता में हैं, तो सुसमाचार आपका है। मसीह आपको उद्धार देगा। यदि आप आत्मनिर्भर हैं और आपको आवश्यकता नहीं है और अपने चुने हुए मार्ग पर चलते हैं, तो आप विनाश की ओर जा रहे हैं। मुझे खेद है कि हमारा महान वैद्य उनके लिए कुछ नहीं कर सकता जो यह सोचते हैं कि वे निरोग हैं। हम लुका 5:33 पद में पढ़ते हैं, लिखा है, और उन्होंने उससे कहा, यहूना के चेले तो बराबर उपवास रखते और प्रार्थना किया करते हैं और वैसे ही फरीसियों के भी, परंतु तेरे चेले तो खाते पीते हैं। अब शास्त्रियों और फरीसियों ने फिर आपत्ति उठाई है कि यहूना के शिष्य और फरीसियों के शिष्य नियमित उपवास रखते हैं परंतु यीशु के शिष्य उपवास नहीं रखते। लुका 5:34-35 पद में लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम बारातियों से जब तक दूल्हा उनके साथ रहे उपवास करवा सकते हो? परंतु वे दिन आएंगे जिनमें दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, तब वे उन दिनों में उपवास करेंगे। मित्रों, आज हमें आनंदित रहना है, परंतु उपवास हमें इसलिए रखना है कि हमारा प्रभु स्वर्ग में है और हम इस संसार में है। जिसने हमारे प्रभु का तिरस्कार किया, यहाँ मुख्य बात यह है कि हम आनंद मनाएं या उपवास रखें। हमारा उत्तरदायित्व है कि हम उन लोगों में सुसमाचार पहुंचाएं जिन्हें मसीह यीशु की आवश्यकता है। पुराने मशकों और पैबंद का दृष्टांत। लूका रचित सुसमाचार का यह पहला दृष्टांत है, जिसे हम लूका 5:36-39 पद में पढ़ते हैं। उसने एक और दृष्टांत भी उनसे कहा कि कोई मनुष्य नए पहरावन में से फाड़कर पुराने पहरावन में पैबंद नहीं लगाता, नहीं तो नया फट जाएगा और वह पैबंद पुराने में मेल भी नहीं खाएगा। और कोई नया दाखरस पुराने मस्कों में नहीं भरता, नहीं तो नया दाखरस मस्कों को फाड़कर बह जाएगा और मस्कें भी नाश हो जाएंगी। परंतु नया दाखरस नई मस्कों में भरना चाहिए। कोई मनुष्य पुराना दाखरस पीकर नया नहीं चाहता, क्योंकि वह कहता है कि पुराना ही अच्छा है। मेरे मित्र, सांसारिक मनुष्य को अपना पुराना जीवन अच्छा लगता है, उसे अपनी पुरानी दाख मधु अच्छी लगती है, अर्थात अपना पुराना रीति रिवाज, धर्म और जो भी बातें उसकी है। महत्वपूर्ण बात तो यह है कि हम पहचाने कि प्रभु यीशु मानव जाति के लिए नया जीवन लाया, चाहे आप कोई भी क्यों ना हो, और वही सुसमाचार है। वह इस पृथ्वी पर पुराने वस्त्र में पैबंद लगाने नहीं आया था, अर्थात वह व्यवस्था में संशोधन करने नहीं आया था। वह क्रूस पर जान देकर पाप का दंड उठाने आया था। उसने इससे भी अधिक किया, वह मृतकों में से जी उठा कि हम पर अपनी धार्मिकता का आवरण चढ़ा दे। उसने हमें सुसमाचार का नया दाखरस दिया। सुसमाचार के नए दाखरस को अनुग्रह की नई मस्कों में रखना है, न कि व्यवस्था की पुराने मस्क में। पौलुस ने इफिसियों की कलीसिया को लिखा, 5:18 में, दाखरस के मतवाले न बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। प्रिय मित्र, प्रभु यीशु आज वही कहना चाहता है। वह हमें कुछ नया देने आया था, वह हमें उसमें विश्वास लाने के द्वारा उद्धार देगा। यहाँ पर 5 समाप्त होता है और 5 प्रभु यीशु मसीह के महिमामय सुसमाचार को अधिकाधिक विधियों द्वारा प्रचार करने की ओर संकेत करता है, जिससे कि मनुष्य सुने और उसे ग्रहण करने या अस्वीकार करने का चुनाव करे। हम सबको अपने अपने निर्णय लेना है। अब हम 6 में यीशु के शिष्य के बारे में देखते हैं, जो गेहूं की बालियां तोड़कर खा रहे थे। वह सप्त का दिन था, अतः फरीसियों ने उनके इस कार्य पर आपत्ति उठाई, जिसका मुंह तोड़ जवाब यीशु ने दिया। यीशु अपने 12 विशेष शिष्यों का चुनाव करते हैं। सप्त के दिन शिष्यों ने गेहूं की बालियां खाई तो फरीसियों ने आपत्ति उठाई। यीशु ने अपने शिष्यों के पक्ष में विवाद किया। 6 का प्रथम भाग अन्य 2 सुसमाचारों के सदृश है। यह सप्त के दिन यीशु के कार्य से आरंभ होता है और यह सप्त के दिन की पहली घटना है। हम लूका 6:1-5 पद में पढ़ते हैं, लिखा है, फिर सप्त के दिन वह खेतों में से होकर जा रहा था और उसके चेले बालें तोड़ तोड़ कर और हाथों से मल मल कर खाते जाते थे। तब फरीसियों में से कई एक कहने लगे, तुम वह काम क्यों करते हो जो सप्त के दिन करना उचित नहीं। यीशु ने उनको उत्तर दिया, क्या तुमने यह नहीं पढ़ा कि दाऊद ने जब वह और उसके साथी भूखे थे तो क्या किया? वह क्यों कर परमेश्वर के घर में गया और भेंट की रोटियां लेकर खाई, जिन्हें खाना याजकों को छोड़ और किसी को उचित नहीं, और अपने साथियों को भी दी? और उसने उनसे कहा, मनुष्य का पुत्र सप्त के दिन का भी प्रभु है। मेरे मित्रों, हम देखते हैं कि शिष्य गेहूं की बालियों को हथेली पर मल मल कर साफ करके खा रहे थे। फरीसियों ने उन्हें सप्त के दिन दौनी करने का दोषी ठहराया। वास्तव में देखा जाए तो वे मूसा की व्यवस्था का उल्लंघन नहीं कर रहे थे, क्योंकि व्यवस्था में दाने निकालना वर्जित नहीं था। देखिए व्यवस्था विवरण की पुस्तक 23:24-25 पद में, यदि वे हसिया लगाकर काटते तो वह फसल काटने का काम था। फरीसियों की अपनी ही व्याख्या होती थी, अतः उन्होंने शिष्यों के काम को सब्द का उल्लंघन ठहराया। प्रभु यीशु ने विवाद नहीं किया, उसने दाऊद के जीवन की घटना सुनाई जो निश्चय ही व्यवस्था विरोधी थी, परंतु उसे उचित ठहराया गया। यीशु के कहने का अभिप्राय यह था कि परमेश्वर के दासों पर यदि व्यवस्था के कारण क्लेश हो तो व्यवस्था की अनिवार्यता उचित नहीं। स्पष्ट है कि शिष्य भूखे थे, यीशु के पीछे चलने का वे मूल्य चुका रहे थे। और दूसरी घटना है सप्त के दिन आराधनालय में सूखे हाथ के मनुष्य की चंगाई। हम लूका 6:6-11 पद में पढ़ते हैं, और ऐसा हुआ कि किसी और सप्त के दिन को वह आराधनालय में जाकर उपदेश करने लगा, और वहां एक मनुष्य था जिसका दाहिना हाथ सूखा था। शास्त्री और फरीसी उस पर दोष लगाने का अवसर पाने के लिए उसकी ताक में थे कि देखें वह सप्त के दिन चंगा करता है कि नहीं। परंतु वह उनके विचार जानता था, इसलिए उसने सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा, उठ, बीच में खड़ा हो। वह उठ खड़ा हुआ। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे यह पूछता हूँ कि सब्त के दिन क्या उचित है, भला करना या बुरा करना, प्राण को बचाना या नाश करना। और उसने चारों ओर उन सबों को देखकर उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने ऐसा ही किया और उसका हाथ फिर चंगा हो गया। परंतु वे आपे से बाहर होकर आपस में विवाद करने लगे कि हम यीशु के साथ क्या करें। प्रिय मित्र, मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि उस विकलांग का वहां उपस्थित होना आकस्मिक घटना नहीं थी। वे जानबूझकर उसे लाए थे, परंतु वे दूसरी ओर यीशु की अनजाने में प्रशंसा कर रहे थे। वे जानते थे कि यीशु उसे चंगा कर सकता है, वरन निश्चय ही करेगा। वे जानते थे कि यीशु सामर्थी और दयावान है। वे अपने अनुमान में सही थे। प्रभु यीशु ने उसे चंगा किया। अब उसके वैरियों ने उसे सब्त के उल्लंघन का दोषी ठहराया। मत्ती के सुसमाचार वृत्तांत में इस घटना के बाद उन्होंने यीशु की हत्या का षड्यंत्र रचना आरंभ कर दिया। अब हम आगे देखते हैं, यीशु 12 शिष्यों का चयन करते हैं। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं कि कुछ शिष्य यीशु के यरूशलेम आने पर संपर्क में आए थे। बाद में जब वह गलील सागर के तट पर विचरण कर रहा था, तब उसने उन्हें बुलाया। वे उसके पीछे हो लिए, परंतु फिर मछली पकड़ने के लिए चले गए। यीशु ने उन्हें फिर से बुलाया और लिखा है कि इस बार वे सब कुछ छोड़कर उसके पीछे आ गए। देखिए लूका 5:11। अब यह शिष्य बनाने का तीसरा चरण है। उसने अपने अनुयायियों में से 12 को चुना कि सदा उसके साथ रहें। हम लूका 6:12-16 में पढ़ते हैं, और उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने को निकला और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। जब दिन हुआ तो उसने अपने चेलों को बुलाकर उनमें से 12 चुन लिए और उनको प्रेरित कहा, और वे ये हैं, शमौन जिसका नाम उसने पत्रस भी रखा, और उसका भाई अंद्रियास और याकूब और यूहन्ना और फिलिपुस और बर्तुलमै और मत्ती और थोमा और हलफई का पुत्र याकूब और शमौन जो जेलोतेस कहलाता है और याकूब का बेटा यहूदा और यहूदा इस्करियोती जो उसका पकड़वाने वाला बना। मित्रों, यहां पर ध्यान दें कि यीशु ने पूरी रात परमेश्वर से प्रार्थना की। क्यों? क्योंकि वह 12 शिष्यों को पृथक करने जा रहा था। निर्णय लेने से पूर्व उसने पूरी रात प्रार्थना की। एक शिष्य विश्वासघाती निकला, एक ने उसका इनकार किया परंतु पश्चाताप भी किया। तथापि यह तो निश्चित है कि परमेश्वर के सेवक चुने हुए होते हैं। प्रत्याशी तो अनेक होते हैं, परंतु यूहन्ना के वृत्तांत में देखें यीशु क्या कहते हैं। यूहन्ना 15:16 में, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। मेरे लिए यह महान शांति की बात है। जब प्रभु ने मुझे प्रचारक होने के लिए बुलाया, तब मैं बहुत कम आयु का था और कभी मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं कभी प्रचारक बनूंगा। वरन मैं तो प्रचारकों को तुच्छ समझता था। मैंने प्रभु को नहीं चुना, उसने मुझे चुना। अब वही उत्तरदायी है। यह बड़ी अद्भुत बात है। मुझे यह विचार बहुत अच्छा लगता है। प्रभु यीशु ने पूरी रात प्रार्थना करना आवश्यक एवं उचित समझा, और परमेश्वर की सेवा के लिए मनुष्यों का चुनाव करने के लिए भी बहुत प्रार्थना की आवश्यकता होती है। एलिया की चादर अकस्मात ही एलिशा पर नहीं गिरी थी, वह ईश्वरीय योग था। आज कलीसियाओं में भी पदाधिकारियों का चयन इसी रीति से होना चाहिए। हमें अपनी भावनाओं और अपनी पसंद की अपेक्षा परमेश्वर से प्रार्थना करके अगुवाई खोजना चाहिए। हमें किसी भी निर्णय को लेने से पहले परमेश्वर के साथ समय बिताना चाहिए ताकि हम एक सही निर्णय ले सकें, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, नीति वचन 3:5 में, कि तू अपनी समझ का सहारा न लेना परंतु संपूर्ण मन से अपने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखना और वही तेरे लिए उत्तम मार्ग निकालेगा। मेरे प्रिय मित्रों, आज मुझे और आपको भी अपना निर्णय परमेश्वर के हाथों में सौंपना चाहिए, प्रार्थना में समय देना चाहिए। आपको यदि किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है या किसी ऐसे जगह में जाना है जिसके लिए आपको निर्णय लेने में तकलीफ हो रही है, तो आप प्रभु के पास आएं, उससे मांगे और निश्चय ही वह आपके लिए मार्ग तैयार करेगा। जिस प्रकार से उसने अपने शिष्यों को चुना, प्रार्थना में समय दिया, आप भी दें और आप उस आशीष को प्राप्त करेंगे। आज हमारे अध्ययन का समय यहाँ पर समाप्त होता है और मैं विश्वास करता हूँ कि निश्चय ही प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत ऐसे आशीष दिया है। प्रभु आपके साथ हो।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन TWR पोस्ट बॉक्स नंबर 4310 नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन TWR पोस्ट बॉक्स नंबर 4310 न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओं, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहां, उसके चरणों में सजदा करूं, वो ही तो है मेरा खुदा। मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहां, उसके चरणों में सजदा करूं, वो ही तो है मेरा खुदा। अपने एक शब्द द्वारा तूने सजाई है चारों दिशा, अपने सामर्थ्य के द्वारा तूने बनाई धरती आसमान, अपने एक शब्द के द्वारा तूने सजाई है चारों दिशा, अपने सामर्थ्य के द्वारा। क्या है इंसान जो तू उसे याद करे, क्या है इंसान जो तू उसे प्यार करे, क्या है इंसान जो तू उसे याद करे, क्या है इंसान जो तू उसे प्यार करे। मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहां, उसके चरणों में सजदा करूं, वो ही तो है मेरा।